इप्सिता ने नंदिनी के बात का जवाब दिया। हम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए गार्डन तक गए थे, आंटी ने नहीं बताया क्या? हम उन्हें बताकर गए थे। इतना बोलकर इप्सिता घर के अंदर आई। उदय वहीं हाथ बांधकर सामने खड़ा हुआ था। उसने इप्सिता को घूरते हुए कहा, ऐशी कहाँ गई थीं आप, वो भी ऐसे अकेले? इप्सिता उदय के चेहरे की तरफ देखने लगी। उदय उस समय काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी और उसने सख्त आवाज में उससे सवाल पूछा था। उसे देखकर इप्सिता थोड़ा सा घबरा गई। उसने अपने मन में कहा, कहीं उदय भाई को हम पर शक तो नहीं हो गया है, वो इतना सीरियस होकर क्यों पूछ रहे हैं? अब क्या कहूँ? इप्सिता को इस तरह सोचते देखकर उदय दो कदम आगे बढ़ा और इप्सिता के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए बोला, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो हमारी बात का, कहाँ गई थीं आप? क्योंकि हम अभी नीचे से ही आ रहे हैं और आप हमें गार्डन में, क्या पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास भी कहीं नजर नहीं आईं? इप्सिता उदय की ये बात सुनकर नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी इप्सिता के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो उदय के पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं उदय, आप इस तरह उसे इतना डराते हुए पूछेंगे तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगी। उदय ने फिर से एकदम सीरियस आवाज में पूछा, ऐशी बताओ हमें कहाँ गई थी? इप्सिता ने थोड़ा सा अटकते हुए कहा, वो एक्चुअली हम गार्डन गए थे, लेकिन गार्डन में काफी शोर हो रहा था, वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस था, छोटे बच्चे भी थे, इसलिए टहलते हुए हम बस थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन जब हमने टाइम देखा कि शाम हो रही है तो फिर हम वापस आ गए। इप्सिता बोल ही रही थी और तभी नंदिनी ने कहा, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे अकेले मत आया जाया करो, और वैसे भी तुम अब जल्द ही एक सुपर मॉडल बनने वाली हो और तुम्हारा इस तरह से अकेले बाहर घूमना सही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कैसे कैसे तरह के लोग होते हैं, उनमें से कुछ सिरफिरे पागल फैन भी हो सकते हैं तुम्हारे, बस इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ओके? इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और तभी नंदिनी ने फिर से कहा, अच्छा जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उदय अभी भी इप्सिता की तरफ ही देख रहा था और उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो अभी भी इप्सिता की बात पर यकीन नहीं कर पाया था। नंदिनी ने जैसे ही उदय के फेस के एक्सप्रेशन देखे, वो समझ गई कि उदय को अभी भी इप्सिता पर यकीन नहीं हुआ है, और तभी वो उदय के पास आई। उसने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप उदय, चलिए आप भी चलकर फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। नंदिनी इप्सिता के लूम की तरफ देख रही थी और तभी वो उदय का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आई। उदय चेंज करने के लिए वॉशरूम में गया और वहीं नंदिनी तुरंत अपने रूम से बाहर निकली। वो इप्सिता के कमरे में गई। इप्सिता वहीं बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसने अपने मन में कहा, हमने भाई से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो? इप्सिता काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। तभी नंदिनी इप्सिता के रूम के अंदर आई। उसने इप्सिता के बगल में आकर बैठते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच रही हो तुम, कुछ मुझे बताओ। जैसे ही नंदिनी को देखा, वो जल्दी से अपने बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और उसे इस तरह हड़बड़ाते देखकर नंदिनी ने कहा, क्या बात है ईशु, इतनी परेशान क्यों हो तुम? इप्सिता ने जल्दी से नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम परेशान नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, ईशु मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तू भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरी भाभी होने से पहले तेरी बेस्टी हूँ और तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम? इप्सिता ने जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनी, वो नंदिनी की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुमने बाहर अभी उदय से झूठ बोला है, लेकिन मैंने उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी अगर अभी वो तुमसे ज्यादा कुछ पूछेंगे तो तुम शायद और भी ज्यादा परेशान हो जाओ, इसलिए चलो अब चुपचाप से मुझे बताओ आखिर बात क्या है। नंदिनी इतना बोलकर इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। तभी इप्सिता ने नंदिनी को अपने गले लगा लिया और उसे जितनी भी टेंशन थी और उस समय वो जितनी ज्यादा डरी हुई थी, उसने वो सब कुछ बिना सोचे समझे ही नंदिनी को बताना शुरू कर दिया। वो उसके गले लगते ही रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर नंदिनी ने कहा, मैं जानती थी तुम परेशान तो हो, बताओ ईशु कहाँ गई थी तुम, कहीं तुम अभिमन्यु जीजू से मिलने तुम ही गई थी ना? जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, इप्सिता ने उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा और नंदिनी ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मैं समझ गई थी, बताओ क्या हुआ वहां पर, क्या कहा अभिमन्यु जीजू ने? इप्सिता नंदिनी की तरफ देखकर बिल्कुल उदास होते हुए बोली, वो हमसे बात करना चाहते थे, इसीलिए ही वो आज सुबह सुबह यहाँ पर आए थे, और तुम्हें पता है कल जब हम वापस आ रहे थे तब भी रास्ते में हमें अभिमन्यु मिले थे। जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनी, उसने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सच में अभिमन्यु तुझे रास्ते में मिले थे, मतलब उन्होंने क्या कहा था तुझे, और आज फिर तुम उनसे मिलने गई, तो क्या बात हुई, मुझे पूरी बात बताओ? इप्सिता नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, वो बस हमसे बात करना चाह रहे थे, और वही उनकी सफाई कि वो उस दिन मंडप में क्यों नहीं आए, और वही सारी बातें बता रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी मजबूरी थी और भी बहुत कुछ, लेकिन आज जब शाम को मैं उनसे मिलने गई तो एक प्रॉब्लम हो गई। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा हैरानी से बोली, कैसी प्रॉब्लम? इप्सिता ने थोड़ा सा घबराते हुए उसे बताया, जिस कैफे में हम अभिमन्यु से मिलने गए थे उसी कैफे में अथर्व सर आ गए और उन्होंने हमें अभिमन्यु के साथ देख लिया। नंदिनी ये बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या अथर्व सर ने तुम्हें अभिमन्यु के साथ देख लिया? मतलब उन्हें लग रहा होगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, उन्हें ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं कल आकर उन्हें सारी बातें समझा दूंगी। अथर्व सर को तो मैं संभाल लूंगी, बस मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अब अभिमन्यु कोई और प्रॉब्लम क्रिएट न कर दे। तुमने तो देखा ना नंदिनी, भाई अभिमन्यु को लेकर कितने ज्यादा नाराज हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज अभिमन्यु पर हाथ उठाया, हमें तो ये देखकर डर ही लग रहा था। नंदिनी, तुम प्लीज प्रॉमिस करो तुम भाई को कुछ भी नहीं बताओगी। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई, और तभी इप्सिता ने नंदिनी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस करो नंदिनी, तुमने अभी हमसे कहा था ना कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड पहले हो और भाभी बाद में, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज तुम भाई को कुछ भी मत बताना। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी वजह से टेंशन में आए और वो अभिमन्यु पर फिर से हाथ उठाए। इप्सिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं उदय से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और चलो बाहर चलकर हम डिनर करते हैं, उसके बाद तुम मुझे पूरी बात बताना। और तुम मुझे ये बताओ, जब अथर्व सर को ये पता चला कि तुम वहां अभिमन्यु से मिलने आई हो, तो क्या उन्होंने अभिमन्यु के बारे में पूछा कि वो कौन है?
इप्सिता ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। हाँ, उन्होंने पूछा था और हमने बोला कि वो मेरे फ्रेंड हैं, और फिर उन दोनों में थोड़ी गर्मागर्मी होने लगी थी, इसलिए हमने उन दोनों को ही वहां से वापस जाने को बोल दिया और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया नंदिनी, ये सब क्यों हो रहा है? हम अपनी लाइफ में कितने ज्यादा खुश थे। हाँ, हमें काफी टाइम लगा और भले ही बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम मूव ऑन हो चुके थे। उसके बाद फिर से क्यों अब अभिमन्यु हमारी लाइफ में वापस आ रहे हैं? नंदिनी ने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो आई होप आगे भी सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद की और उसने धीमी आवाज में कहा, आई होप सब अच्छा ही हो। इप्सिता वैसे ही परेशान वहां पर बैठी हुई थी, और तभी नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं, वैसे भी उदय फ्रेश हो गए होंगे और अगर वो मुझे अब यहाँ तुम्हारे साथ देखेंगे तो फिर कहीं उन्हें शक ना हो जाए। नंदिनी की इस बात पर इप्सिता मजाक में बोली, हम दोनों ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हैं जिससे भाई को शक हो जाएगा, और वैसे भी हम स्ट्रेट हैं और तुम भी। इप्सिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए उसके कंधे पर मारा और बोला, हाँ हाँ बिल्कुल इसी शक की बात कर रही थी मैं भी, बेस्ट फ्रेंड के साथ सीक्रेट अफेयर, वैसे भी हस्बैंड लोगों को अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड कुछ खास पसंद नहीं आते। नंदिनी ने भी उसका साथ देते हुए ये बात बोली तो इप्सिता हंसने लगी, उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई तो नंदिनी ने भी राहत की सांस ली, और फिर वो दोनों ही एक साथ उसके कमरे से बाहर निकल आईं। इप्सिता नंदिनी के साथ सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और सब एक साथ डिनर करने लगे, लेकिन उदय एकदम सीरियस होकर बैठा हुआ था। नंदिनी और उसकी माँ दोनों ही इप्सिता से बातें कर रही थीं, लेकिन उदय ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था, वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अभिनव को वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थीं। उसने जब देखा कि मासा जिस तरह से बेहोश हुई और सब लोग उनके आगे पीछे लग गए, कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था तो कोई डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था, वो ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, ओ गॉड, ये राजमहल परिवार के लोग सब ऐसे ही होते हैं क्या? कितने ज़्यादा ड्रामेटिक हैं ये लोग, और ये औरत इतनी क्या नौटंकी दिखा रही है? थोड़ा सा बेहोशी तो हुई थी, उसके लिए इतने सारे डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये अमीर लोग और उनके अलग अलग चौंचले। अभिनव वहीं पर अपना हाथ बांधकर खड़ा था और तभी उसने कहा, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, जो भी करना है करें, मुझे तो बस अपना देखना है। इतना बोलकर वो राजमहल में इधर उधर घूम रहा था, और तभी उसने राजमहल की सारी एंटीक चीज़ों को देखते हुए कहा, यहाँ की सारी सजावट में तो इन लोगों ने काफ़ी पैसा लगा दिया है, इतना पैसा गरीब बच्चों पर खर्च करते तो ये लोग शायद और ज़्यादा ही अमीर होते। अभिनव इतना बोलते बोलते सीधे महल की गैलरी में पहुँचा, और राजमहल की गैलरी में उसे काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नज़र आईं जो काफ़ी ज़्यादा महंगी थीं, और वहीं जगह जगह पर नौकरों को देखकर वो बोला, अगर यहाँ पर ये लोग ना होते तो इनमें से कई सारी पेंटिंग्स को तो मैं यहाँ से उड़ा ले जाता और काफ़ी महंगे दामों में इन्हें बेच देता।